योजनों ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी
तो परसों जरा पैसेंजर गाड़ी पे बैठे थे तो काफी लेट थोड़े से ठिकाने पर पहुंच पाए। आज जरा राजधानी एक्सप्रेस चलाते हैं। तो फिर पता क्या हुआ? एक बार मालूम है ना आपको? नहीं तो एक बार ऐसा हुआ कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे, ये गीत की लाइन आप सबने मुरली में सुनी हुई है। तो हम लोगों से ये कहते हैं कि जब ब्रह्मा भाग्य बांट रहे थे तब तुम सो रहे थे क्या, या फिल्टर लेके गए थे क्या? ऐसा आपने भी कईयों से कहा है, लेकिन मैं तब ना तो सोई थी और ना मैं फिल्टर लेके गई थी। मैं सोना चाहूं तो भी उसने मुझे सोने नहीं दिया। और आप मार्क करें कि ईश्वर खुद जिन्हें प्यार करता है उन्हें वो सोने नहीं देता। और अगर आप में से किसी को ऐसी नींद आती हो कि अलार्म कब बज गया और अमृत वेला शुद्ध पवन कब बज गया आपको पता ही नहीं पड़ा, तो समझ लीजिए कि मैं तो ईश्वर को प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करता, ये पक्की निशानी है। तो मुझे ड्यूटी थी कि मैं रोज सुबह करेक्ट 6:20 पर बाबा के कमरे में रहना चाहिए मुझे, और मुझे ये पूछना चाहिए बाबा से कि आज की वाणी में गीत कौन सा बजाना है। और बाबा को इतने सारे गीतों की लाइन मुख पर याद रहती थी, तो बाबा ने कहा बच्ची छोड़ भी दे आकाश सिंहासन बजाओ। बच्ची ने जाकर के रिकॉर्ड सेट कर दिया क्योंकि ग्रामोफोन को चाबी भरनी थी। फिर जब बच्ची ने गीत बजा दिया तो बाबा ने तुरंत क्या बेबी बुद्धि है, मेरे को आके भी इतना समय हो गया यहाँ और अभी तक गीत बजा रही है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे। मेरा जो पारा चढ़ा 113 डिग्री पर, आंखें घूर के मैं बाजू से बुढ़े को देखने लगी कि वही है ना, अभी तो कमरे में कहा था और वही गीत बजा दिया मैंने। और ये 200 की सभा में हिस्ट्री हॉल में सीजन लगा पड़ा है अप्रैल महीने का, और बुढ़ा कहता है मैं कब से आ गया हूँ, ये बेबी बुद्धि है। कल कह रहा था कि पैनासोनिक कैसेट है बजना शुरू करती है तो बंद नहीं करती, और आज कहता है कि बेबी बुद्धि है। और इन्होंने तो कहा था बजाने को, गीत बजाने की ड्यूटी थी वो बजा दिया। मनमोहिनी दीदी सामने की तरफ यहाँ बैठे हैं, मुझे मुरली के नोट्स लेने हैं, फिर मुझे अंतरदेशीय पत्र पर उसके कॉपीज निकालने हैं, वो कॉपीज पर ऑफिस में लेटर लिखा जाएगा फ्रंट में, और जो जो मेन सेंटर है जहाँ रोज रोज कारोबार चलते हैं वहाँ ये पत्र रोज के रोज जाएगा ताजा ताजा माल। मैंने नोट्स ले लिए, इतने लोगों के बीच में बेइज्जती कर दी। नाश्ता खाने बैठी क्या? मैं तेरे को याद नहीं करती। मैंने खाना खाना शुरू किया। दोपहर का भोजन मैंने खाती, रात को सोने गई तो मनमोहिनी दीदी और मेरा कमरा एक ही था, तो बैठ के याद करके सोना ये नियम है, मैं नहीं करती याद। तो जाने से तुरंत लेटने से सो गई, मैं बैठ के याद नहीं की। तो मुझे दीदी ने मेरे अपने पास बुलाया, मिठरी है राज, मीठी बहन मेरे पास आओ, ऐसा दीदी ने कहा। तो मैंने पूछा अच्छा है क्यों बुला रहे हैं आप। तो उन्होंने पूछा तो क्या थे हुए तुमको, क्या हो रहा है, कुछ पकाना थे हुए। मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ तो हुआ है, आज सुबह से मैं तुम्हारी दिनचर्या देख रही हूँ, कुछ तो हुआ है। क्या होना था, सुबह मैं बाबा से कमरे में पूछ के आई और बाबा ने कहा और मैंने बजाया और बाबा ने फिर मुझे ऐसा बोल दिया सबके बीच में। अरे मिठरी बहन, वो जिसने बोला था ना वो साकार बाबा था, और जिसने हॉल में आके कहा था ना वो तो निराकार बाबा था। साकार बाबा, निराकार बाबा। अच्छा कमरे में अलग होता है और हॉल में आता है तो अलग हो जाता है। अगले दिन जब मैं पूछने गई बाबा से तो मैं आंखें फाड़ के देख रही थी ये कौन सा वाला बाबा है, ये साकार वाला है कि निराकार वाला है। तो अंतर मुझे समझ में आ गया, आपको भी बता देती हूँ। खैर मैं आपको समझाने वाली कौन होती हूँ, बता देती हूँ कि साकार बाबा माना गुलाबी गुलाबी और निराकार बाबा माना लाल लाल, और साकार बाबा माना थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ के बैठने वाला, और निराकार बाबा एकदम टाइट ऐसा कमांडर टाइप में। तो ये निशानी हो गई। अब जब बात करना है तब समझ में आ जाना है कि गुलाबी वाला बाबा है या लाल वाला बाबा है। आज जब जब वो गीत बजता है और मैं मुरली सुना रही होती हूँ तो आप मेरी मनोदशा को समझ सकते हैं कि, पर आज के बाद जब आप भी ये गीत सुनेंगे सेंट्रम पर मधुबन में तो आज का सीन आपको भी जरूर याद आएगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने बाबा से कहा बाबा प्लीज मुझे सेंटर पर भेजो ना, क्योंकि मुझे जो श्री बाबा मिल गया है तो मैं चाहती हूँ कि मैं जगत को दिखाऊं, लेकिन मधुबन में तो नो चांस। कभी कभी कोई गलती से पंछी आ जाता था, हम तो वैसे भी जरा वैसे थे हाइट में, और उनको सुनाने के लिए और हमारे सीनियर बड़े लोग थे यहाँ, तो मैं अंदर अंदर इतना तड़पती थी ये सब कुछ मंजूर है मुझे, स्थूल सेवा जो भी करनी पड़े वो सारी मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे रोज रोज सुनाने का भी मौका मिलना चाहिए। देहाभिमानी क्या होता है वो देखना है तो वो टाइम मुझे देखना, ज्यादा नहीं सिर्फ 13 बार दिन में बाल साफ करने का, ठीक करने का बाल, और बिल्कुल टिप टॉप बच्ची क्या करूं। मैं भेज तो देता था लेकिन तू बहुत सुंदर हो ना, तुमको उठा के ना ले जाए इसलिए नहीं भेजता। तो बाबा ऐसा करो एक बुरखा बनवा दो और एक काजल की डब्बी दिलवा दो। अब जो हूँ जैसी हूँ ऐसी हूँ इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद बाबा इंजेक्शन लगाएगा, सेवा का उमंग भरेगा, फिर संतोष जाएगी बाबा के पास, बाबा मुझे मधुबन में नहीं रहना मुझे सेंटर पर भेजो। और बाबा क्लास में क्या बोल रहे हैं, ये उस जमाने का मधुबन आज का नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रही, बाबा ने मुझे भी नहीं कहा था, क्या पच्छड़ माल की तरह बस खाते रहते हो सोते रहते हो। पच्छड़ माल माना पिछड़ा हुआ माल, माना जो गाय भैंस दूध नहीं दे देना उनको, जो आश्रम में डाल देते हैं और जो दानी लोग आकर के चारा डाल जाते हैं तो सेंटरों के लोग कमा के लाते हैं डाल जाते हैं, तुम खाए पड़े रहते हो सेवा नहीं करते, ये कह के बाबा कांटे के नीचे कांटा डाल के उमंग दिलाते थे। तो एक रात मैं और बाबा बिल्कुल सामने सामने बैठे हैं, उस दिन की है ये बात, तो बाबा कहते कहते खुद ही हंस पड़े। बाबा के छोटे से कमरे में सारे लोग गुड नाइट करने की कोशिश करते थे, पहुंचते थे, तो मैं फटाफट गई दूध लिया ग्लास में और बाहर जाकर के बाबा के रूम के बाहर ही मेरा बेड था, मैंने रख दिया, और जैसे ही मेरा एक पांव अंदर और एक पांव बाहर और बाबा ने मेरा नकल लगाना शुरू किया। नकल लगाने में तो एक्सपर्ट, सीखना हो तो बाबा से। उन्होंने शुरू कर दिया, बाबा मेरे को मधुपान नहीं देना, मेरे को सेंटर पर भेजो। बच्ची यही कहने के लिए आई हो ना तुम, यही कहने आई हो ना। तो आज बाबा को मुरली सुनाते सुनाते हंसी आ गई थी कि अब मैंने कहा, पर किसने आकर के मेरे सामने वही अर्जी डालनी है, और तू वही तो कहने के लिए आई हो ना। और जो सुना बाबा मुरली चलाते चलाते हंस रहे थे, और उनको अपनी हंसी रोक कर फिर मुरली आगे बोलने के लिए लंबा सांस खींचना पड़ा, ये उसने और मैंने दोनों ने एहसास कर लिया था। तो मैंने बाबा से कहा कि हाँ मैं यही कहने आई हूँ, मैं नहीं रहती मधुबन में। मैंने तेरे को थोड़ी पछड़माल कहा है, क्यों बाबा मधुबन में नहीं रहता, मैं पछड़माल हूँ क्या? ये विश्वरत्न मधुबन में नहीं रहता, ये पछड़माल है क्या? ये यीशु है, लच्छू है, दीदी मनमोहिनी है, ये लोग पछड़माल है क्या? बाबा तुमको थोड़ी बोलता है, तुमको नहीं कहता, तुम मुरली टाइप करती हो ना। और मुरली के लिए तो मेरे बच्चे इतने दीवाने हैं, इतने तड़पते हैं कि क्या पूछती हो। तो जितने भी मुरली पढ़ते हैं ना, ये सारे तुम्हारी प्रजा में आने वाले, तुम चिंता मत करो। मैं नहीं कह रही हूँ कुछ भी, ये तो एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं एक बार बाबा के पीछे पड़ी, बाबा मुझे सेंटर पर भेजो। उनको मालूम था ये मछली जरा ज्यादा ही चंचल है, ये ऐसे वैसे जाल में फंसने वाली चीज नहीं है। तो जाल उन्होंने खुद ही बुंद रखा था समझो। तो मोह का कीड़ा क्या होता है वो देखना है तो मुझे देखो। और मुझे मेरे लौकिक माता पिता में इतना मोह, इतना मोह कि मुझे भाई भाभियों की परवाह नहीं, लेकिन माँ बाप के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी, ये मेरा फाइनल प्रोग्राम था। फिर जब मधुबन आ गई तो पहली नजर में दिल बोल उठा कि बुढ़ा जो भी कह रहा ना मैं वही करूंगी। बाबा ने पूछा बच्ची क्या बनोगी, तो मैंने कहा नर नारायण बनते हैं और नारी लक्ष्मी बनती है, तो मैं लक्ष्मी बनूंगी। लक्ष्मी बनेगी, ये स्कूल कॉलेज के धक्के खाने वाले और धूल खाने वाले लक्ष्मियां नहीं बनते। तो फिर कैसे बनते हैं? हाँ ये पूछा ना, तो बाबा के अंग संग रहने वाले लक्ष्मी बनते हैं। तो मैं बाबा के अंग संग रहूंगी। ये सारे निर्णय चेकिंग में हो गए, पहले तो कोई प्लान प्रोग्राम ऐसा नहीं था। तो मैंने बाबा से कहा प्लीज बाबा आप मेरे को सेंटर पर भेजो, बच्ची में भेज देता था। लेकिन क्या है ना, मेरा देरे में बहुत मोह फंस गया है, और तुम अगर मधुबन से चली गई ना तो यहाँ मेरा दिल ही नहीं लगेगा। हाँ आपको कैसे मोह होता है, आप तो सबको मोह निकालो बोलते हैं ना, आपको कैसे मोह आ जाता है? अगर मुझे तेरे में मोह नहीं होता था तो मैं तुमको सीप के अंदर जैसा मोती सुरक्षित रहता है, क्योंकि मुझे गेट से बाहर कदम रखने की परमिशन नहीं थी, तो वैसा मैंने तुमको पाला है। अगर मोह नहीं होता तो तुमको मैं इतनी मेहनत करके क्यों पालता था? बुढ़ा बड़ा होशियार है, ये पंचर वाली ट्यूब को पैच लगाना बहुत अच्छा है। भेजूंगा भेजूंगा, और जब भेजने का दिन आया, बच्ची तुम्हारा हाथ इतना बड़ा है, ये पैच है, हाँ ट्यूब को पैच है ये, बच्ची तुम्हारा हाथ इतना बड़ा है कि मैं चाहूँ ना तो सारी क्लास को इसमें ब्रह्मा भोजन खिला सकता हूँ, आप भी देख लीजिए। तो मुझे पहली पहली बार गुलजार दादी के साथ दिल्ली जाने का सुअवसर मिला, बाबा के साकार होते हुए जिद करके, कहते कहते, रो के, हंस के, रूट के, मतलब जिस भी तरीके से मैं मनाना जानती थी। तो बाबा ने हाथ में चने की दाल, गर्म नहीं होनी चाहिए ना, और यहाँ मैदे की पूरी जिसको सिंधी स्टाइल में पकवान बोलते हैं, मैदे की पूरी नमकीन, कड़क पापड़ की तरह दाल पकान। वो बाबा ने खास बनवाया और मुझे खिलाया, खुद खाया, बड़ी दीदी को बुलाया, उनको खिलाया, विश्वजन दादा को बुलाया। ये मेरी सिया पार्टी हो रही थी, मैं पहली बार सेवा पर जा रही थी। फिर विश्वजन दादा को बुलाया, उनको खिलाया, इसलिए कि तुमने बच्ची को सिंधी सिखाया, वो कीड़े मकोड़े वाली भाषा। इस तरह से बाबा ने इस हाथ को पत्तल बना के खाते हुए और खिलाते हुए करीब करीब पौना घंटा ये हाथ बाबा के हाथ पर ही था। डालते रहते थे, खाते रहते थे, खिलाते रहते थे और एक एक को याद करके बुलाते रहते थे। तो जब तक वो आए तब तक हमारा दोनों का आपस का नंबर चलता रहता था। फिर वो आते थे, उनको मिलता था, तुमने इसको ये किया इसलिए, तुमने इसको ये किया इसलिए। मेरा हृदय इतना गदगद होता है उस समय जब मुझे मधुबन में पुराने साथी मिलते हैं साकार बाबा के समय के, और वो अपनी पार्टी को ये कहकर के बहने परिचय करा रही होती हैं कि इसको बाबा बहुत प्यार करते थे। पात्र तो और भी थे, इसको बाबा बहुत प्यार करते हैं। मुझे याद है कि जिस समय मैं मधुबन में 15-16 साल की उम्र में हूँ, उस समय मेरा पिता 89-90 ईयर का था। पूरा मधुबन में मिट्टी मिट्टी है, फर्श नहीं, कुछ नहीं, और सामने की जो ट्रेनिंग सेंटर वाला जो पोर्शन है, अगर पार्टी चली गई है और दरवाजा खुला छोड़ गई है और पटपट पटपट हो रहा है, मेरी ड्यूटी नहीं है। लेकिन इतना जान जिगर से प्यार मुझे मेरे घर के लिए, मैं जाऊंगी वो दरवाजा बंद करने के लिए, फिर जब मैं आ रही होंगी और अचानक अगर बाबा ऑफिस के कमरे से बाहर मैदान में आ जाएंगे सामने, तो मैं दूर से आ रही होंगी तो तब तक वो ऐसे ही खड़े रहेंगे जब तक कि मैं पास आऊंगी। फिर मैं आऊंगी, फिर वो गले लगाएगा, फिर मेरा हिसाब पूछेगा, फिर मैं बताऊंगी कि मैं वहां क्यों गई थी। मैं जिस सेंटर पर सेवा में हूँ वहाँ मेरे पास बाबा ऐसा ही है, पर्टिकुलरली बनाया हुआ। यज्ञ में तो ये सब बहुत बाद में बने हैं फोटो, बाहें पसारे बाबा पुकारे, लेकिन मैं जिस समय याद करने के लिए हॉल में सामने बैठती हूँ 32 फुट दूर, तो ये बीच का फासला खत्म हो जाता है और मुझे लगता है कि बाबा के हाथों में मेरे भी हाथ ऐसे ही सामने हैं और मैं उनके इतने नजदीक हूँ। बाबा के अव्यक्त होने से करीब 1.5-2 महीने पहले आगरा का म्यूजियम बना है, बहुत डिसेंट। पहला म्यूजियम जयपुर, दूसरा म्यूजियम दिल्ली और तीसरा म्यूजियम आगरा। तो दादी कुमार का पार्टी को लेके आए हुए हैं और उन्होंने टूर पर जाना है, तो मुझे बाबा ने बुलाया कि कल हमारी कुमार का पार्टी को लेके टूर पर जा रही है और तुम्हें उनके साथ जाना है। और उसके पहले मैंने मन को पटा लिया था कि मन अब तो टिक जाए, आए अब मुझे नहीं जाना है। जब मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है तो बुड्ढे का सवार हो गया कि भेजना ही है, कल ही जाना है। बोले प्लीज बाबा अब मुझे नहीं जाना। नहीं नहीं बच्ची, जाना भी जरूर है और फिर पछताना भी जरूर है। करंट लगे जैसा हो गया, ये माउंट से आबू रोड का रास्ता कितना गोल 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 गोल, उसमें कुछ हो जाने वाला है कि क्या है कि भगवान है ना, इसको तो सब मालूम रहता है पहले से। तो जाना भी जरूर है और पछताना भी जरूर है, ये कैसी विदाई है। कोई जो हुआ, उन्होंने जो चाहा वो तो उन्होंने करवाना ही था, तो हम आगरा पहुंच गए, सेवा में बिजी हो गए। तो लौकिक माता पिता शरीर छोड़ चुके हैं, अव्यक्त माता पिता भी विश्रामी हैं। सबसे मेरी अंतिम मुलाकात 13 दिन 15 दिन 13 दिन 15 दिन पहले हुई है। है ना, ये भी अपने आप में एक आनंद की बात। तो 13 दिन पहले बाबा का वहाँ पत्र आता है महेंद्र भाई को कि एक तो मेरी ऑलराउंडर बच्ची दिल्ली में रहती है और दूसरी ऑलराउंडर बच्ची मैंने आपके पास भेजी है, ठीक से संभालना। मैंने आपको उसमें बताया था कि मुझे साक्षात्कार हुआ करते थे लेकिन मैं उसको शब्द नहीं दे पाती थी, और मधुमन में आने के बाद साकार बाबा के बाजू में बैठकर अनगिनत बार भोग लगाने का जीवन में हीरे तुल्य मौका रहा। और उस समय बाबा योग लग चुका है और लग चुका है ना योग। चलिए, मैंने आपसे ओम शांति की, जवाब नहीं दिया, नाराज है। मैंने वाणी से बोला तो आप भी वाणी से बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये हुई ना कोई बात, मैंने सोचा मैंने कोई झगड़ा भी नहीं है कुछ भी नहीं, फिर ओम शांति का जवाब क्यों नहीं दिया। जवाब ना देना तो साबित करता है नाराजगी है कोई। तो आगरा जाने के बाद 1.5-2 महीने म्यूजियम में बहुत रश रहता था, भाई बहनों का बहुत अच्छा म्यूजियम बना था। तो आबुरो जाने तक दिल धड़क रहा था कि बाबा ने कहा है ना जाना भी और पछताना भी है तो क्या होने वाला है आखिर। हालांकि मैं ये जानती थी कि मेरी उम्र बहुत लंबी है, ऊपर वाले को मेरे से बहुत सेवा लेनी है, मुझे करनी है उसकी सेवा, लेकिन फिर भी हम वहां पर करीब करीब 13-14 लोगों का स्टाफ रहते थे। तो 17 जनवरी सारे भाई बहने हम योग में बैठे हुए थे, बड़ा बड़ा हॉल था, ठंडी थी मगर बिना कुछ ओढ़े हुए भी मुझे गर्मी सी लग रही थी और इतना ज्यादा रो रही थी, मैं इतना रो रही थी। मैं अच्छी वाली रह रही थी मधुबन में जब मैंने कहा कि मुझे भेजो तो बुड्ढे ने नहीं भेजा, और जब मैंने आना नहीं चाहा तो उसने जबरदस्ती भेज दिया। अब मैं इनको कैसे कहूँ कि मेरा यह दिल नहीं लग रहा, मेरे को मधुबन भेज दो प्लीज, मैं सही भी बाबा के बिना नहीं रह सकती यार। अभी अभी तो आई हूँ, अभी अभी मैं कैसे कह सकती हूँ इनको कि मेरे लिए फिर खर्चा करके फिर मुझे भेजो, क्या सोचेंगे ये लोग। तो दादी तो टूर वूर करते कराते गांधी सेंटर अपने ठिकाने वापस पहुंच रहे। इन्होंने डिमांड किया और बाबा ने कहा कि बच्ची का जहां दिल लगे ना वहां उसको रख देना और मुझे बता देना कि कहाँ है। उनको हैंड भी चाहिए थे, मुझे भी सेवा में अच्छा लगा कुछ दिन तक। तो लेकिन 17 तारीख रात को योग भी जब सारे उठ के चले गए और मैं अभी वहां बैठी थी तो अचानक ध्यान में जाती हूँ और 18 तारीख रात का सीन एक्सेप्ट देखती हूँ। मैं सारे सो चुके हैं, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या है ये सब सीन। माया तू मेरी कितनी भी परीक्षा ले ले, तू मुझे क्या भी सीन दिखा ले, लेकिन अब तो विद्यालय से जाएगी तो संतोष की अर्थी बार जाएगी, जिंदा तो नहीं जाती। तू मेरी कितनी भी परीक्षा ले ले चाहे। उसी सुबकती सुबकती हालत में मैं जाकर के सो गई। फिर सुबह अमृत वेला भी हुआ, मैंने दिन भर ना खाया ना पिया। मेरा खाना पीना तो 17 तारीख रात को जो हो गया था वो हो गया था 7:30 बजे। 18 तारीख की रात को भी याद करते बैठे थे, नियम ही था वहां का, तो सारे उठ के चले गए, मैं वहीं बैठी रह गई। मैं दिन भर में इतना रोई, लोगों ने समझा मेरी माँ बहुत बीमार थी तो ये शायद जाना चाहती है और यहाँ के बड़े लोग इसको भेज नहीं रहे इसलिए ये बेसब्र हो रही है। और मैं आत्मा ये चाहती थी कि मैं कहाँ आके सोने के पिंजरे में फंस गई हूँ, ये पिंजरे का दरवाजा खुले और मैं पंछी उड़ू और सीधी बाबा के गोद में जाके। तो रात को 1:30 बजे फोन आता है, काला वाला डायल करने वाला सिस्टम, फोन डब्बा, 13 लोग हैं घर में। मैं तभी तभी जाके बिस्तर पर लेटी थी और जरा सी नींद लगने ही लगी थी, और यहाँ तो बाबा विश्रामी हो चुके थे तो कोई उठता ही नहीं फोन उठाने को। जनवरी का महीना है, मस्त नींद में सोए हैं सारे। मैंने ठेका लिया है क्या फोन लेने का, मैं नहीं उठती। एक बार पूरा बेल बज गया, दूसरी बार पूरा बेल बज गया। अच्छा अच्छा, वो बड़े दीदी है ना, मनमोहिनी दीदी, वो इलाहाबाद गए हुए कुंभ मेले पर, और वो ट्रेन ना आगरा से गुजरती है, हो सकता है वो दीदी आने वाले होंगे और कुछ खबर देते होंगे। इस कल्पना से मैंने फोन उठाया। कानपुर से गंगे दादी फोन पर बात कर रहे थे। महेंद्र भाई को बुलाओ, मैं बोली वो 3 मंजिले पर रहते हैं। बिमला बहन को बुलाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में सोए हुए हैं, आपको जो कहना है मुझे कह दो, मैं उनको जाके कह दूंगी। नहीं, बिमला को तो बुलाओ जो वहां के बड़े बहन जी थे, तो उनको बुलाया। उनके हाथ से रिसीवर एक बार तो जमीन को टच हो गया पटक के, फिर उन्होंने खींच के ऊपर लिया। दादी क्या कह रही हैं आप, बाबा व्यक्त हो गए? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आपको खबर नहीं आई क्या अभी तक? उन्होंने पूछा। नहीं, हमको तो पहले कोई संदेश नहीं आया। इतने में फोन रखा तो दिल्ली से आलम दादी का फोन आया। आपको मालूम हुआ? बाबा विश्राम में है, आपको मालूम हुआ? मुझे तुरंत ध्यान में भेजते हैं घर के सारे लोग इकट्ठे होके कि तुम जाके वतन में देख के आओ सच्चाई क्या है। तो 17 तारीख रात को जो संतोष ने सीन देखा था, वो सीन करेक्ट अभी देखा ही है 1:45 बजे। बाबा ये क्या किया? तो क्या तुमसे पूछ के बुलाता? और बाबा ने जब साकार में यहाँ सबके पास संदेश आया था, तो बच्चों क्या मैं आपसे छुट्टी लेकर के बुलाता? और क्या आप लोग छुट्टी दे देते कि ले जाओ इनको? ड्रामा काम नहीं। आई थी तो माँ भी थी, बाप भी था। चलो मांग गई तो दिल को ढारस थी कि बाप तो है। उनके डर के कारण भी सब लोग अपने को अच्छा रखते थे। अब जब वो भी नहीं है तो अब यहाँ किसके लिए जीना है? फाइनल हो गया कि मैं और महेंद्र भाई सुबह पहली ट्रेन से निकलेंगे, आबू जाएंगे, आंखों से देखेंगे कि हकीकत क्या है। अभी भी दिल को चैन नहीं आया, तसल्ली नहीं हुई। मैं वहां ही रह गई और घर के सारे गाड़ी में भर के निकल दिए। आगरा के सेंटर पर करीब 60 फुट ऊंचा झंडा लगा हुआ है जो आगरा स्टेशन से दिखता था। वो झंडा खुद ब खुद नीचे आ गया आधे में, तो जो रोड से गुजर के जाने वाले लोग थे, उन्होंने म्यूजियम में संदेश सुना था, 2 महीने पहले की तो बात थी, तो आए बहन जी ओम शांति, ओम शांति। भाई जी आप मनमोहन भाई जी, आप इतने दिन से दिखे नहीं। और वो मेरे से गंभीरता से बात कर रहा है। हम डर रहे हैं कि हम लोगों को अनाउंस क्या करें। बाबा ने तो संगम भर हमारे साथ रहना था ना, और बाबा गए हैं, वो मेरे को अभी क्या मालूम है जब तक ये लोग आगू वाले आए और कुछ बताए। बहन जी सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब ठीक ठाक है। क्यों, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बस ऐसे। नहीं आप बताओ तो सही क्यों पूछ रहे हैं? तो दिल में बड़ा अजब लगा कि रात के 2 बजे की खबर ये भाई को सुबह 7 बजे क्या मालूम है। तो कहता है एक तो मैं कई दिनों से आया नहीं था, आने का बहुत मन तो हो रहा था, लेकिन अब इतने दिन नहीं आया तो अब आऊंगा तो आप लोग क्या कहेंगे मालूम नहीं, वो एक संकोच था। लेकिन आज जो ये झंडा नीचे हो गया ना, नहीं वो तो ऐसे ही हो गया होगा, वो हमने किया नहीं है, वो तो ऐसे ही हो गया होगा, क्योंकि मैं बोलूं कैसे कि बाबा नहीं है। वो अभी अनाउंस नहीं कर सकते हम। इन्होंने क्या कहा आने से पहले कि अभी तो हम जा रहे हैं और ऐसा लगा कि तो हम आपको बुलाएंगे। जब ये वापिस आया 13 दिनों के बाद तो सारे हंस हंस के बातें कर रहे। मेरा गुस्सा तो 213 डिग्री पर। आप लोग क्या हंस रहे हैं बाबा चले गए हैं कि अभी आए हैं बाबा? और आप गए गए कोई फोन नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई बुलाना नहीं, मेरा वो कुछ भी नहीं लगता था। और बाबा गए हैं आप हंस क्यों रहे हैं? थी छोटी लेकिन दबा के ये क्या है। एक तो बुलाया नहीं, गए तो अपनी मस्ती में मस्त हो और ऊपर से हंस हंस के सारे बातें कर रहे। इनको खुशी है क्या बाबा के जाने की? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? आप लोग क्यों हंस रहे हैं? अब उन्हें म्यूजियम बना। मई महीने में म्यूजियम का उद्घाटन था। मैंने माता पिता को थोड़ा सा अगरबत्ती जलाई थी कि आप आबू में कहो कि मुझे बोलो मधुबन ने बुलाए। वो आए, उन्होंने कहा। मुझे भी बड़ी दीदी का निमंत्रण पहुंच गया और जैसे ओपनिंग के लिए और सारे आए थे मैं भी आई। तो मधुबन ऐसा लग रहा था तुझे अगर बीच में ही छोड़ के जाना था तो अपना बनाया किस लिए, अपने पास बुलाया किस लिए, और ये नखरे किस लिए किए कि मेरा तेरे में बहुत मोह फंस गया है। जाना था तो मेरे को पहले क्यों भेजा ये आगरा? और जैसे बाबा का फोन आई है, आबू से फोन आया था ना, एकदम उस समय वो बात याद आती है कि बाबा ने कहा था जाना भी जरूर है और पछताना भी जरूर है। क्योंकि हम उनको जिद करते थे ना, हमको भेजो भेजो, तो ये उसकी पनिशमेंट थी या सजा थी? नहीं, ऐसा था उनको मालूम था कि ये सदमा सह नहीं सकेगी जब देखेगी ना ये सब कुछ, तो सह नहीं सकेगी। उन्होंने मेरी उस नाजुकता का एहसास करते हुए मुझे पहले इतना दूर भेज दिया कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। यही कारण होना चाहिए, वरना तो वही जगह है, वो जगह है वहाँ सर्दियों में शाम को धूप होती थी तो वहां मैं बाबा के साथ बैडमिंटन खेलती थी। और बाबा के रूम की खिड़की के इधर जो है ना, इधर जगह किचन में जाने के लिए नीचे, इधर गर्मियों में छांव होती थी 5:30 बजे, तो बैडमिंटन का नेट यहाँ लगता था और मैं बाबा के साथ बैडमिंटन खेलती थी। अगर मैं खुद ब खुद 5:45 बजे नहीं पहुंच गई क्योंकि मैं मुरली टाइप करके बिजी थी, तो बाबा का निमंत्रण पहुंच जाएगा कठपुतली को बुला के आओ। कभी कमरे में अचानक घुसूंगी तो बोलो सरकार क्या हुक्म है, तितली कहां कहां घूम के आई हो, तब से अब तक दिखी ही नहीं बाबा को, कहो हजूर क्या आज्ञा है। क्या क्या ना सुनाऊ आपको, और ऐसा है ना। तो फिर एक बार पता क्या हुआ, मामा वाणी सुना रहे हैं और बाबा को ये सुनना है और देखना है कि मामा कैसे मुरली सुनाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सुनाते हैं। मगर इतना लंबा पाओ और उसमें लकड़ी की खड़ाओ, उसको इतनी छोटी सी रबड़ की पट्टी और इसकी कमांडर की चाल बुड्ढे बाबा की, हाँ वो थटक पटक थटक पटक ऐसा आवाज रहता था ना, तो कितना भी वो चोरी करना चाहे तो नहीं कर सकेंगे। तो बाबा जैसे सीढ़ियों के पास, हॉल की सीढ़ी के पास पहुंचे तो सबका ख्याल जाता था, क्लास वालों का, कि बस अब मम्मा की मुरली पूरी होगी, अब बाबा आ रहे हैं। तो जैसे सब दरवाजे की तरफ देखते थे ना, मम्मा को फट से मालूम हो जाता था। और मम्मा जहां मौन होते थे ना, उतने में बस स्टॉप कर देते थे जैसे बाबा अंदर आते थे। मम्मा वाणी चला रहे थे, रात का टाइम था, पार्टियां आई हुई थी उस दिन। तो बाबा ने पूछा, मम्मा आपने बच्चों से पूछा सब ठीक ठाक पहुंच गए हो, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्योंकि नाइट क्लास में तो बाप में बच्चों की मुलाकात होती थी, सुबह तो प्रिंसिपल आता था पढ़ाने के लिए। तो मामा ने, मैंने नहीं पूछा, सबको ऐसा बोल के इशारे से कहा, मुख से नहीं कहा। फिर मामा ने पूछा, मामा आपने पूछा इन सबको? अच्छा मामा इनको पूछो कि आप सब ठीक ठाक आए ना, आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मामा का बोलना बाबा के सामने। बाबा ने जब पांचवी बार मामा से कहा कि आप इनको पूछो, आप सब ठीक ठाक आ गए ना? नहीं मामा ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, बच्चों आप सब ठीक ठाक आए ना, आपको सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मगर मम्मा ने बाबा के सामने उतनी बात बच्चे बोलकर, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, मम्मा ने नहीं बोला। तो बाबा तरसते रह गए, लेकिन वो कभी नहीं देख पाए या मम्मा की वाणी सुन पाए कि मम्मा कैसा बोलते हैं, कैसा बैठते हैं। तो मम्मा के ब्राह्मणी तो जहां तक ख्याल है अभी अभी गए हैं, शरीर छोड़ा है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा होता था, इतना लंबा फ्रॉक रहता था, इतना सा पजामा दिखता था उसमें से, और घुटने से नीचे तक बाल होते थे घिरे हुए लंबे लंबे काले काले। और मम्मा जब आके बैठते थे तो ज्यादा देर तक चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकते थे, फिर पांव ऐसा पलटते थे। हिंदू सोसाइटी में पांव ऐसा पलट के सत्संग में बैठना शुभ नहीं मानते, मुस्लिम लोगों को छूट है। तो मम्मा नहीं बैठ सकते थे इसलिए फिर ऐसा बैठते थे। लेकिन मम्मा की मुरली तो 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, उसके बाद बाबा आकर के वाणी चलाएंगे। तो जब तक बाबा वहां है तब तक मम्मा फिर पांव बदली नहीं करेंगे, वो कष्ट उठाएंगे लेकिन ऐसे बैठे रहेंगे, ये बड़ों का सम्मान। एक डेढ़ साल मेरा मधुबन में रह के कट गया, बड़ा डिफिकल्ट लगने लगा, क्योंकि दिन में करीब करीब 16 घंटे 18 घंटे और कभी कभी 20 घंटे भी सीजन में ड्यूटी देती थी। ऑल राउंड कोई भी वर्क ऐसा नहीं था जो इन हाथों से ना गुजरा हो। तो मैं अपने पिता से ये कहना चाहती थी कि अच्छा है मैं ब्रह्मा कुमारी ही बनके रहूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से आके ले जाओ, दिनचर्या बहुत टाइट है, जब मिलता है तो ही खाना है, लेकिन जब भूख लगी है और उस समय अगर बांटने का टाइम नहीं है तो फिर कोई मासी बुआ नहीं है पूछने के लिए। वो थोड़ा सा हार्ड फील होता था। अच्छा है सर, अब ये संदेश दूं कैसे? तो रात को बैठ के एक लेटर लिखा, लेकिन पोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि गेट दबा नहीं जा सकती। तो एक माता जो भागंती हो गई है और उसकी उल्टी बुद्धि को मैं समझती थी उसकी बातों से, तो सोचा अगर इसको पत्र दूंगी ना तो ये जरूर डाल देगी। लेकिन उस समय उसको भी सद्बुद्धि आ गई है, उसने भी जाके पत्र ऑफिस में दे दिया यीशु दादी के पास। अगले दिन सुबह रिकॉर्ड हो गया, सामने आके बैठी, एकदम ध्यान में जाती हूँ और मैं शिव बाबा की सूक्ष्म शक्ति को, आंखें खुली है मगर ये देह का भान और दुनिया का भान नहीं है, और एक सूक्ष्म सी चैतन्य शक्ति चमकदार आई और सिर के ऊपर दो तीन चक्कर लगाए और आंख के पॉइंट से अंदर। तो पहले तो गुलाबी बाबा था, फिर जब ये पॉइंट अंदर चला गया तो बाबा जरा वो लाल वाला हो गया और बैठक भी टाइट हो गई। इसके बाद करीब 1.25 घंटा बाबा वाणी सुनाते रहे, लेकिन मैं एक भी शब्द अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहे। मैं एक अलौकिक आनंद में खोई हुई थी। मेरे और बाबा के बीच में सिर्फ एक कारपेट ही था। उस दिन बाबा ने खुद सबको टोली खिलाई थी अपने हाथों से। तो इसका मतलब कि 70-75 लोग होंगे, वो एक एक आए थे, उन्होंने बाबा से टोली ली थी, अपनी सीट पर गए थे, लेकिन इन बातों ने भी मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। जब वाणी पूरी हो गई तो बड़े दीदी पास में आके बैठे और उन्होंने मेरा ध्यान तोड़ने किया, मदद किया, जो भी कहेंगे आप। तो जैसे ही आंखें खुली और इस दुनिया का भान हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे डिस्टर्ब क्यों किया गया, मैं इतनी अच्छी सी दुनिया में खोई हुई थी, इतनी अलौकिक लहरों का मैं आनंद ले रही थी। मैं भूल गई कि मैंने कोई चिट्ठी लिखी थी। 15 दिन तक मेरे पांव जमीन पर नहीं, आधी रोटी खाए तो ऐसा लगता था मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, और बिस्तर पर सोने के बाद भी करण बदली किए तो जैसे कि मैं 2 फुट, मतलब मैं बहुत ऊंचे ऊंची किसी जगह से मैंने ऐसा साइड चेंज किया, ऐसा फील होने का। और कोई जोर से हंसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये 10-15 दिनों का जो अलौकिक आनंद था, दिन भर वो चिंगारी मेरे आंखों के सामने सामने घूमती रहती थी। अभी थोड़ा सा नशा कम हुआ था, 15 दिनों में थोड़ा सा नशा कम हुआ था, फिर मैं बाबा के सामने बैठी मुरली सुन रही और फिर वो ज्योति आती है, फिर वो बाबा के सिर पर चक्कर लगाती है और बराबर में मैं उनको आंखों में प्रवेश होते देखती हूँ, और बाबा की जैसी मुरली पूरी होती है मैं उस ज्योति को बाहर निकलते भी देखती हूँ। और उस समय अपने जीवन में इतनी स्फूर्ति महसूस करती हूँ। मैं ये भूल चुकी थी कि मैंने कोई चिट्ठी लिखी थी। मुझे करीब 1 महीने में, उस समय मैं करीब 16-16.5 साल की हूँ, 3-4 बार ये अनुभव बार बार हुआ। वो दिन गया और आज का दिन आया। अन्य सब लोगों की तरह इस जीवन में भी मैंने फीके, कड़वे, मीठे, खारे, खट्टे, सुखदाई, दुखदाई, इन सारे अनुभवों में से मेरा जीवन सफर भी गुजरा है। लेकिन हर बात कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखा के गई है। मैंने कभी दुनिया पलट के देखने का संकल्प भी नहीं किया। मैं या मेरा कोई भी और साथी, वो भाई हो या बहने हो, उन्होंने अगर एक बार अपने जीवन में अलौकिक जीवन अपना लिया है तो फिर मरना तेरी गली में और जीना तेरे गले में। अगर ऐसा उद्देश्य और लक्ष्य है तो जीवन जीवन है, वरना हम इतने कीमती समय को अगर अपने हाथों से इसलिए बर्बाद कर बैठेंगे कि उसका महल मेरे से ऊंचा क्यों है और इसकी झोपड़ी मेरे से नीची क्यों है। वैसे भी दुनिया में आप देखेंगे तो दुनियादारी लोग सिर्फ इस एक कारण से दुखी हैं, इसके पास ज्यादा क्यों है या फिर इसके पास कम क्यों है। तो किसी की झोपड़ी, किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी गिराना, ये तो कोई समझदार व्यक्ति की बात नहीं है। जिंदगी में एक बार ठोकर लगना ये पॉसिबल है, लेकिन एक ही पत्थर से दोबारा ठोकर खाना, ये समय की पुकार को समझने वालों की पुकार नहीं है। मैं लास्ट बात आपसे ये कहूंगी कि मैं जन्म लेने से संपूर्ण आत्मा थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बाबा की ब्राह्मणी थी और बाबा मेरी ब्राह्मणी थे, और मुझे उन्होंने क्या नहीं सिखाया। तन, मन, धन और जन, ये 4 चीजें अच्छे भाग्य की निशानियां होती है, आपको भी मालूम है सबको। और मुझे ये सारी की सारी उपलब्ध हैं क्योंकि मैं सिर्फ उसके लिए हूं और वो सिर्फ मेरे लिए है। उसे कुछ नहीं चाहिए, दिल की सच्ची प्रीत बस। इसलिए प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनशंती। यादव कौरव पांडव सारे के सारे इसी एक ही सभा में से सेलेक्ट होंगे। यादव कौरव और पांडव अगर हम अपने अपने दिल पर हाथ रख के पूछे, मुझे आप भाई बहनों को छोटी सी इतनी ही राय देनी है कि अब हमें अपनी दिनचर्या पर इतना ध्यान रख करके जीना है कि मेरा दिल नहीं खाना चाहिए कि मैं ऐसा ना करता तो अच्छा था, वैसा ना करता तो अच्छा था। या तो जिसकी आंखें कम खुली होती हैं या जिसकी आंखें बंद होती हैं, उनसे अगर ठोकर लग के कुछ नुकसान हो गया तो वो तो पछता सकते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं दिन भर में बार बार ये सोचकर पछताती हूँ, पश्चाताप होता है कि ये ना करती तो अच्छा था, वो ना करती तो अच्छा था, इसका मतलब कि ब्रह्मा तो भाग्य बांट रहा है लेकिन मैं फिल्टर लेके बैठी हूँ। और ब्रह्मा तो भाग्य बांट रहा है ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से लेकिन मैं सोई हुई हूँ, क्योंकि नींद में तो व्यक्ति गलतियां कर बैठता है और हमें 24 घंटे जागते रहना है। हम पहरेदार को तनख्वाह इसलिए देते हैं कि हम तो सो जाएं, वो जागता रहे, लेकिन उसके बावजूद तो सारी रात डंडा मारता ही रहता है, जागते रहो। अरे उसको पगार इसलिए थोड़ी दी है, तनख्वाह इसलिए थोड़ी दी है, तुम जागो ना, हमको तो सोने दो। नहीं, हमें दिन भर 24 घंटे जागते रहना है। मुरली सुनते वक्त आपका चेहरा नीचा नहीं होना चाहिए कि बाबा ने कहा लेकिन मैं नहीं किया या मैं नहीं कर पाता हूँ। और मुरली सुनाते समय मेरा चेहरा नीचा नहीं होना चाहिए कि मैं सुना तो रही हूँ लेकिन जो आज बाबा ने कहा है वो मेरे जीवन में नहीं है। और मेरे भाई बहन जानते हैं कि देखा आज तो बहन जी का भी कान पकड़ा गया। बहन जी भी ऊंचा बोलती है ना, बहन जी भी जोर से बोलती है ना, बहन जी भी कड़वा बोलती है ना, तो आज बाबा ने वाणी में कहा है तो बहन जी का भी नाक कान पकड़ा गया। या फिर कभी कभी भाई बहन आपस में एक दूसरे को ऐसा इशारा भी करेंगे, इस स्कूल की आदत होती है ना, देखा हमें तो कहते थे आज इनका भी नंबर लग गया है। किस बात का मुझे अपने आप में शुद्ध गर्व है, मैं 26 वर्षों से उसी परिवार में रहकर के सेवा दे रही हूँ, तो इतना पुराना संबंध होने पर कईयों के दिल आपस में दूर दूर होने लगते हैं कईयों कारणों से, लेकिन क्योंकि मैं भी उन्हें सम्मान देती हूँ तो मैं जो सामान चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है और वो भी मुझे सम्मान देते हैं। तो आपके पास भी एक ही टैक्ट है कि सम्मान दीजिए, सामान लीजिए। हम सामान तो चाहते हैं लेकिन सम्मान नहीं देते, इसलिए रिश्ते दूर दूर हो जाते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है कि आप सम्मान देते रहो और जो चाहिए वो सामान लेते रहो, तो ना असम्मानित होने का मौका आएगा और ना असम्मानित करने का मौका आएगा। और उस दिन जो क्लास का एंड था, इच्छा मात्रम अविद्या है ना, तो इच्छा जीवन की स्वच्छता को खत्म कर देती है। जिसने इच्छा पर काबू पाया वो स्वर्ग में है और इच्छा ने जिस पर काबू पा लिया वो कितना पक्का पॉइंट याद है सबको। तो इसका मतलब कि उस दिन आप लोगों ने एक सुंदर सा वायदा किया था, किया था ना कुछ, तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था वो। हाँ, आपको पक्का याद रहा वो। तो आज हमने ये पक्का सोच लिया है कि हमें मुर्गा बन के जीना है मुर्दे को खुद को तो आकर्षण होता ही नहीं है, लेकिन उससे दूसरों को भी आकर्षण नहीं होता। चलता फिरता व्यक्ति तो मार तोड़ भी सकता है, उससे लोग नहीं डरते, लेकिन जब डेड बॉडी पड़ी होती है ना तो पास नहीं जाते। मुर्दा मुर्दे को क्या दे सकता है? इसलिए ना तो आप मेरे से कोई तमन्ना रखो, पर ना मैं आपसे कोई तमन्ना रखूं। क्या आपको ये सौदा मंजूर है? ठीक है ना। और दूसरी बात मैं हमेशा याद दिलाती हूँ, कि याद रखती भी हूँ, इसलिए मुझे याद दिलाना भी याद आता है, कि हम पत्थर की मूर्तियों से तो ये तमन्ना कर सकते हैं, भक्ति मार्ग में करते रहे, और आज भी बाबा मम्मा के चित्र सचित्र को देख के भी हम तमन्ना कर सकते हैं कि हमने बाबा के सामने इतना दिल ऐसा रख के माफी मांगी है, तो बाबा हमें जरूर माफ कर देंगे हमारी गलतियों को। भक्ति में भी हमने देवी देवताओं के सामने यही सोचकर नाक कान रगड़ा था कि हमें वो माफ कर देंगे। क्या हम जिंदा आपस में एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते? जो गलती उससे हुई है क्या हमसे नहीं हो सकती? या हमने की नहीं है क्या कभी गलती? अगर मैं अपने साथ के छोटी बहनों को कुछ कह रही हूँ उनकी किसी गलती पर, तो ये सोचेंगे कि अगर यही गलती इनसे खुद से हो जाती थी तो? आजकल का ब्लड है, हमें तो कह लेते हैं, ठीक है, हमें कहने वाला भी ऊपर है ना, तो वो सोचेंगे हमें भी ऊपर वाला कह सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा क्यों हो? वही जो जब राजा होशियार राजा जब चालबाजी के कारण उस राजा के काबू में आ गया, तो उसको लगा कि अगर इसको छोड़ दूंगा ना, माफी तो मांग रहा है, अगर इसको छोड़ दूंगा तो फिर ये मेरे पर कब्जा कर लेगा, इसलिए गला साफ ही कर जाना चाहिए एक बार। आपको मालूम है कि फांसी चढ़ाने से पहले हमेशा तमन्ना पूछी जाती है, तो ये हारने वाले राजा ने पूछा, बोला कि इस समय जो आपकी इच्छा होती थी, अगर मैंने आपको पकड़ा होता था तो जो आपकी इच्छा होती थी वही मेरी इच्छा है। तो वो भी जीना चाहता था ना, तो वो भी जीना ही चाहता है, तो ठीक है मैं तुमको जीने की छुट्टी देता हूँ, लेकिन मेरी सीमा से पार हो जाओ। मैंने जब चार लोगों के बीच में किसी को कुछ कहा तो उन्हें इसलिए खराब लगा कि बहन जी अकेले में भी तो कह सकते थे, चार लोगों के बीच में बोला, ठीक है, अगर मुझे कोई भी कुछ कहेगा तो मैं ये सोचूंगी ना कि मुझे अकेले में कह सकते थे, तो दूसरा भी यही सोचता है कि अगर मुझसे हो भी गया है तो जानबूझ के तो नहीं हुआ, पर अगर कहना ही था तो अकेले में कह देते। तो जो हमसे दूसरे लोग उम्मीद रखते हैं, है ना, और हम भी उनसे वही उम्मीद रखते हैं, तो अगर हमने क्षमा देना या क्षमा लेना नहीं सीखा तो हमने ब्राह्मण बन के संगम पर कुछ भी नहीं सीखा, और अगर इतना सीखा तो सब कुछ सीखा, पर अगर ये नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि नम्र घास जितना चैन देती है उसको तो आग लगती नहीं, मगर उस सूखी वाली खड़ी हुई घास खुद तो जलती है, जो आसपास में होता है उसको भी जलाती है साथ में। उबलते हुए दूध को ठंडा करने के लिए कितने पानी के छींटे चाहिए? बहुत थोड़े से ना, हालांकि वो पानी भी इसके संग में आके खुद भी गर्म हो जाएगा। तो मुझे तो चुंबकीय जीवन जीना है, मेरा पिता भी चुंबक है, और हम जो बाप समान माँ समान बनने की बातें कहते और सुनते और पढ़ते रहते हैं, नोटबुक में लिखते रहते हैं, तो उसमें साकार बाबा इतना जल्दी अव्यक्त कैसे हो गए और मम्मा कैसे अव्यक्त हो गए, हम यहाँ के यहाँ ही बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई कारण नहीं बताया, और हमारे पास कारण की लंबी लिस्ट है। ओम शांति, ओम ओ आज के बाद हम अपने जीवन में पुरुषार्थ में प्रवृत्ति करने के लिए कभी भी कोई कम नहीं बताएंगे। मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम। जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। जिंदगी को तमन्ना थी हम राज की, बेताब दिल को जरूरत थी आवाज की। तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को खुशी का किनारा मिला। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम। जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। जमाने का डर